खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। उससे पहले कि हम जिंदगी बख्श कलाम में से अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखें, आए हम चंद लम्हों के लिए खुदावंद के हुजूर झुकें और खुदावंद की हिकमत और दनाई मांगें। जैसे यकूब पहला बाप उसकी 5वीं और 6वीं आयत में खुदा का बंदा कहता है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदावंद से मांगे, वो बगैर मलामत किए प्याजी के साथ शफकत के साथ मांगने वालों को देगा। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और खुदावंद का बंदा यर्मिया नबी खुदा के वादे को याद दिलाते हुए कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा। मीशल, अब्द नजू और दानियल का खुदा, जिंदा खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला है, आए हम उसके हुजूर झुकें। कादर मुतलक खुदा, जैसे तूने दानियल की दुआ पर खुदाम खुदा कान लगाए और उसे गहरे भेदों का खुदाम खुदा फहम बख्शा, हिकमत और दनाई बख्शी, वैसे ही खुदावंद इस वक्त हम सब तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं तेरे हजूर आते हैं। अपने कलाम की रोशनी हम सबको बख्श ताकि आज के दिन में मसीह की सूरत और उसके नक्शे कदम पर खुदाम खुदा पाक रू की कुदरत में ढलते जाएं और अपने मुखालफ को और उसकी तमाम तरकीबों को और झूठों को और फरेबों को समझें ताकि हम उम्दा मसीही ज़िंदगी का सफ़र इस ज़मीन पर गुजार सकें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। आप सबको याद है और सबको याद रखने की ज़रूरत है कि ईमानदार होते हुए इस ज़मीन पर हम मुसाफिर हैं। हमारा वतन जो आसमान है, जिसे बाइबल मुकद्दस यूं फरमाती है कि हम जो ईमान लाने वाले हैं हम सब इस ज़मीन पर मुसाफिर की मानद हैं और हमारा असली वतन आसमान है, जिसे खुदावंद की सकूनतगाह यानी कि उसका तख्त जहां पर है, जिसे तीसरा आसमान भी कहा जाता है। इसलिए ज़मीन पर हम सब का जिंदा रहने का मकसद ये नहीं कि खाएं पिएं फलें बढ़ें बच्चों की शादी ब्याह करें और बात ख़त्म, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि खुदा ने शुरू ही से आदम से कहा था। जब खुदा ने आदम को और हवा को पैदा किया और सबसे पहला हुक्म उनको यही दिया था कि तुम ज़मीन को ममूरो मकूफ करो, फलो भरो और दिए हुई तमाम जगह की उस बागे अदन की निगाहबानी करो। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस ज़मीन पर हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं कि सांस लें, बच्चे पैदा करें या फिर ज़मीन को ममूरो मकूफ करें, खेती बाड़ी करें, नहीं। उसके साथ साथ जो अहम मकसद आपका और मेरा और हर फर्द बशर का, जो ख़ास तौर पर खुदावंद यस्सु पर ईमान रखता है, उसके जीने का मकसद ये है कि खुदावंद यस्सु मसीह को जाने और उसकी मर्जी को इस ज़मीन पर पूरा करें। इसीलिए आज हम इफ़िसियों 4 बाप उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे और यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल यूं ईमानदारों को फरमाता है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसकी सुनी, और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, अपनी और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीजगी में पैदा की गई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आज हम सब की तरबियत, नसीहत, हौसला अफजाई, दुरुस्तगी हो, आमीन। पालूस रसूल यहाँ पर ईमानदारों को कहता है कि तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। कौन सी तालीम? बाइबल मुकद्दस का सबसे आसान तरीका है और उसको समझने का कि जब भी किसी हवाले को, किसी बयान को पढ़ा जाए, उसके जो बुनियादी असूलात हैं वो ये हैं कि कौन बोल रहा है, उस किए जाने वाले बयान का क्या मतलब है और किन से बात हो रही है, और चौथा सबसे जो अहम असूल कि हम अपनी ज़िंदगी में उसे किस तरह जगह देकर उसमें से सीख सकते हैं जो हमारे लिए मौजूदा दौर में बरकत का बास बन सकता है। तो जब पालूस कहता है कि तुमने, तो वो इजतमाई तौर पर कलीसिया को लिखते हुए कहता है, जैसे आप सब इजतमाई तौर पर जमात की सूरत में मौजूद हैं। जब वो कहता है तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, तो इस बात का इशारा है कि हर एक को वो मुखातब कर रहा है जिसमें मैं आप सब मौजूद हैं। और वो कौन सी तालीम है? वो कहता है कि जो गैर कौमों का तरीका कार है उसके मुआफिक आइंदा को ज़िंदगी ना गुजारना। अब सबको याद होगा कि गैर कौमों का तरीका कार जो अबादत का, परस्तिश का और उनकी कुर्बानियों का क्या था? हमें फलस्तीनी, हमें मिस्री और बाबली और फिर कनानी और फिर दूसरे बहुत से लोगों की ज़िंदगियों की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तरह की क्या की कुर्बानियाँ और इबादतें गुजरानी जो खुदा के हजूर उसके मैार के मुताबिक ना थी। इसलिए पालूस कहता है कि हम ईमानदारों को उन लोगों की तरह जहालत की बातों में, बहुधा ख्यालात में ज़िंदगी नहीं गुजारनी। कनानी अपने बच्चों को कुर्बान करते थे, मिस्री बहुत से दूसरे क्या कहते थे कि जानवरों की, बहुत से परिंदों की, लकड़ी और पत्थर के गड़े हुए उन सूरतों की क्या करते थे, प्रस्तुति करते थे। मिस्रियों ने भी ऐसा बहुत सा काम किया था जो कि खुदा के हजूर मकबूल ना था, जिनके चाल चलन को जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं यहूदी कौम ने अपनाया। जब मूसा पहाड़ पर खुदा से कलाम लेने के लिए गया तो वापस आकर देखा कि उन्होंने घास खाने वाले बैल को अपना देवता बनाकर उसकी इबादत करना शुरू की। तो हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमें भी इस दौर में जिंदा खुदा की इबादत, जहालत के वक्तों के वक्त में जो लोग गुजार चुके हैं ज़िंदगी, उनके मुआफिक नहीं चलना। इसीलिए पालूस कहता है कि हमें गैर कौमों की मुआफिक नहीं चलना क्योंकि वो अंधे हैं, उनकी अकल तारीख हो गई है, वो ना समझ हैं, उनके दिल सख्त हो गए, इस बायस वो खुदा की ज़िंदगी से खारिज रहे, खुदा से दूर रहे, खुदा से जुदा रहे, उन वादों से, उन नेमतों से, उन बरकतों से जो खुदावन खुदा ने हर ईमान लाने वाले के लिए तैयार की थी। और 19वीं आयत में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कहता है पालूस रसी, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया। सुन होने से मुराद जैसे जब किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जब किसी के बड़ा घाव आ जाता है जिस्म में और उसे टांके लगवाने की जरूरत होती है, तो डॉक्टर ज़रूरत के मुताबिक ऐसी नशावर चीज़ को, दवाई को इस्तेमाल करते हैं जिससे वो हिस्सा सुन हो जाता है, जिससे इंसान को दर्द महसूस नहीं होती और किसी किस्म का एहसास नहीं रहता। वैसे ही पालूस रसूल कहता है कि उन्होंने सुन होकर, किन्होंने? गैर कौमों ने, जिन्होंने इसराइल के खुदा को कबूल नहीं किया, जिन्होंने यसु मसीह को अपना नजात दहिंदा ना माना, उन सबों ने रूहानी तौर पर सुन होकर, यानी कि मुकम्मल तौर पर उनके एहसास खो गए, उनको कुछ महसूस नहीं होता था रूहानी तौर पर, जैसे एक मुर्दा को जब उसमें से रूह खुदा के पास चला जाता है तो जिस्म को कुछ महसूस नहीं होता। मुर्दा जिस्म को अगर कोई सिरिंज लगाई जाए या कोई चोट लगाई जाए तो उसे महसूस नहीं होगा क्योंकि रूह वहाँ पर मौजूद नहीं, जिस्म सिर्फ वहाँ पर मौजूद है। तो उन लोगों की हालत ऐसी होगी और उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि ईमानदारों, तुम में से हर एक को मैं याद दिलाता हूं कि तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। कौन सी तालीम? मसीह खुदावंद की तालीम क्या थी? हमें पहाड़ी वाज में यीशु मसीह की तालीम नज़र आती है, हमें यीशु मसीह की तालीम नज़र आती है यूहन्ना की इंजील 13 बाप से 17वें बाप में। यीशु मसीह की वो आखिरी, क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी लंबी गुफ्तगू जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ की, जिसे बाला खाना की गुफ्तगू कहा जाता है। उस रात जब यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया, उनके साथ आखिरी फसा खाया, उनको जो सबसे अहम दर्स सिखाया, यीशु मसीह की तालीम का सबसे अहम दर्स, कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो अपने आप को छोटा करे, अगर तुम में से कोई खिदमत करवाना चाहता है तो वो मुझसे सीखे कि इब्ने आदम खिदमत करने नहीं बल्कि खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। क्योंकि उस दौर, उस रात से कुछ दिन पहले शागिर्दों में ये बोलचाल थी कि हम में से बड़ा कौन है, कौन खुदा के तख्त पर दाहिनी और बाहिनी तरफ बैठेगा। तो तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। मसीह ने उस रात सबसे जो अहम तालीम उनको दी वो क्या थी? कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आने वाले दिनों में हम एक स्टडी को शुरू करेंगे और उस स्टडी का जो मौजू होगा वो क्या है? एक दूसरे के कम से कम 100 से ज़्यादा हुक्म दिए गए हैं जो यीशु मसीह की तालीम को पालूस रसूल ने, पतरस रसूल ने, यूहन्ना रसूल ने, यहूदा ने, यकूब ने लिया और उनको बयान किया है। इसलिए तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है सुनी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? आप सबको याद होगा यूहन्ना की इंजील 14 बाप उसकी 6 आयत में, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। तुमने, फिर खुदा उनका बंदा पालूस कहता है कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी। सबको याद होगा यीशु मसीह ने ये बयान यूहन्ना की इंजील 10 बाप उसकी पहली आयात में ही कह दिया था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, जो मेरे गला बाँध की भेड़ें हैं वो मेरी आवाज़ पहचानती हैं, वो किसी गैर के पीछे ना जाएंगी, क्योंकि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और उसी में यह तालीम पाई होगी। यीशु मसीह की तालीम क्या थी? बहुत कुछ हमें सीखने को यहाँ पर मिलेगा जब हम 22वीं आयत को देखते हैं कि यीशु मसीह की तालीम पाई होगी, और वो तालीम क्या थी? एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे पर तरस खाना, एक दूसरे के लिए बेहतर सोचना, एक दूसरे के लिए भलाई के मंसूबे रखना, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहना, लानत ना करना। और सबसे जो बड़ा दो हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में दिए, कलीसिया के लिए, उस दौर के ईमानदारों के लिए और आज के ईमानदारों के लिए, सबसे बड़े दो हुक्म मूसा को खुदावंद ने 10 हुक्म दिए थे यहूदी कौम को कि वो उसे पूरा करें, क्योंकि कोई भी 10 हुक्म को पूरा नहीं कर सकता था। 10 हुक्म का देने का मकसद यही था कि बनी नू इंसान खुदा की ज़रूरत को महसूस करे कि हम इन हुक्मों पर पूरा नहीं उतर सकते, इसलिए हमें तुझ निजात दहिंदा की ज़रूरत है उस अबदी निजात और रहाई के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को और हर दौर के ईमानदारों को सबसे बड़े दो हुक्म दिए। अगर कोई इन दो हुक्मों को पूरा करे तो उसने शरारी शरीयत को पूरा किया। वो हुक्म कौन से हैं? किसी को याद है? अगर नहीं तो मेरे साथ देखें, लूका की इंजील मेरे साथ निकालें। लूका की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने ये दो हुक्म दिए हैं जो पूरी शरीयत को पूरा कर सकते हैं। लूका की इंजील उसका दस बाब उसकी 25वीं आयत से। ये उस वक्त का वाक्य है जब खुदावंद यीशु मसीह लोगों के दरमियान थे और जमाने वालों ने उसे उन्हें जमाने के लिए ये बातें की। 25वीं आयत में लिखा है, और देखो एक आलमी शराब उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने ये सवाल किया जो बहुत पढ़ा लिखा वकील था, जिसे कह सकते हैं वकालत करने वाला, शरीयत को बयान करने वाला। 26वीं आयत में लिखा है, उसने किसने खुदावन ने उसने उससे कहा, तोरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस आलमी शरा से ये सवाल पूछा और 27वीं आयत में जवाब है, उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये वो दो हुक्म है कि अगर कोई इस जमीन पर इस काबिल है तो सबसे बड़े दो हुक्म क्या हैं, खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से मोहब्बत रख, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने मानद, अपने बराबर की मोहब्बत रख, जिसमें किसी किस्म की क्या कहते हैं कि कोई भी तकाजा नहीं पाया जाता कि अगर मैं एक जोड़ा पहनना चाहता हूं तो मेरे पड़ोसी के भी पास एक जोड़ा होना चाहिए। तो ये जवाब उस शरा के आलम ने दिया, उसने उससे कहा, तू ने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जीता रहेगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यस्सु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है। आगे यस्सु मसीह ने एक सामरी की कहानी उसको बयान की, जो डाकुओं में घिर गया, एक काहिन आया और दूसरा लावी आया और तीसरे सामरी जो सफर कर रहा था, उसने उस डाकुओं में घिरे हुए शख्स को क्या की, उसकी तमादारी की, उसकी सारी क्या कहते हैं कि जरूरियात के मुताबिक, जरूरियात से बढ़कर उसकी क्या की, हफाजत की, उसका तहफ्फुज़ किया, उसके खाने के लिए, उसकी दवाई पानी के लिए सब कुछ मुहैया किया। तो इस कहानी से हमें ये बात सीखने की मिलती है कि अगर कोई शरीयत के 10 अहकाम को पूरा नहीं कर सकता तो वो इन 2 अहकाम को भी पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए हम सबको खुदा के फजल से निजात मिलती है, लेकिन पालूस कहता है कि तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। मसीह ने कभी नहीं कहा कि अपने दुश्मनों के साथ दुश्मनी रखो। यीशु मसीह ने कहा उनको माफ करो क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। इसलिए हमें मसीही होते हुए इससे पहले कि हम किसी दूसरी को मसीह की मोहब्बत के बारे में बताएं, हमें आपस में मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। और ये किस तरह होगा, पालूस रसूल कहता है पहला करंथियों 10वें बाब के अखीर में कि किस जिस तरह मैं मसीह की मानद बना हूं, तुम सब मेरी मानद बनो। इसलिए इस बात पर हम खत्म करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप उसकी 29वीं आयत में हम देखते हैं कि यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को आते हुए देखा तो उसने कहा, देखो ये वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और वहां पर खुदावंत के बंदा यूहन्ना ने जो राज की बात बताई, जो आज मेरे लिए, आपके लिए और हर एक फर्दे बशर के लिए है, वो ये है कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। हमें अपने आप को खाकसार करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को खुदावंद के हजूर फरोतन बनाने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को खुदा के हजूर खाली करने की ज़रूरत है, तब ही हम हकीकी मोहब्बत को समझ सकेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 30वीं आयत में यूहन्ना ने ये बात कही, जरूर है कि वो बढ़े, कौन, खुदावन यीशु मसीह, और मैं घटूं। आए हम खुदावन के हुजूर झुकें, क्योंकि यीशु मसीह की यही तालीम है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे के लिए भलाई करो। यीशु मसीह ने ये बात अपने शिगिर्दों को वाजह तौर पर कह दी थी, इससे पहले कि तुम यहूदिया, सामरिया और दुनिया की हदों तक पहुँचो, मैं चाहता हूँ कि पहले यरूशलम से शुरू करो। हमें अपने घरों से मसीह की मोहब्बत को शुरू करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। आए हम दुआ करें। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और सही फैसला करने की कुव्वत और ताकत बख्श, ताकि तारीकी और नूर में, मोहब्बत और नफरत में खुदा खुदा वजन कर सकें कि हमें किस का चुनाव करना है। आई हुई तमाम माओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।